नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मनाने की अपनी वार्षिक परंपरा को जारी रखते हुए श्री मोदी ने आज गोवा और कारवार के तट पर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीपोत्सव मनाया। श्री मोदी ने कहा कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारत के सशस्त्र बलों की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी के भारत की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का विशाल प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 मई को भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए एक घातक आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तथा पाकिस्तान में कई आतंकवादी बुनियादी ढांचा स्थलों को निशाना बनाकर समन्वित हमले किए।
भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 3 गुना बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और 2014 से अब तक 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां वितरित की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा निर्यात का प्रमुख केंद्र बन रहा है।
हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है।
रोशनी का पर्व दीपोत्सव आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दीपावली पर मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थानों को दीपों और रंगीन रोशनियों से सजाया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रार्थना की कि ये पर्व सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ये अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि इस पर्व पर सभी नागरिकों का जीवन सद्भावना, प्रसन्नता और समृद्धि के प्रकाश से जगमगाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की आवाजाही का जायजा लिया। श्री वैष्णव ने 24 घंटे काम कर रहे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। इन त्योहारों के दौरान रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। दीपावली और छठ पूजा के दौरान सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 12,000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज पूरा हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा अभी तक 1066 पर्चे दाखिल किए जा चुके हैं। इस चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में विधानसभा की 122 सीटों के लिए मतदान होगा। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल राजद ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव वैशाली जिले के राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से पहले ही नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। कांग्रेस ने 6 पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी है, जो दूसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिन के दौरे पर कल केरल जाएंगी। वे बुधवार को सबरीमला मंदिर में दर्शन करेंगी और बृहस्पतिवार को तिरुवनंतपुरम के राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।